हाल ही में प्राप्त किए गए कैबिनेट के गोपनीय दस्तावेज दर्शाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ईरान के राजदूतों को 1990 के दशक में वीजा प्रदान करने में हिचकिचाहट थी। इसका कारण बस कुछ महीनों पहले कैनबरा में ईरान के दूतावास पर हुए हमले की वजह से था। उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग थे और 1 जनवरी 2017 को जारी किए गए ये कागजात दिखाते हैं कि उनके मंत्रिमंडल ने इस बात को स्वीकृति दी कि यदि सुरक्षा संगठन ईरान के राजदूतों को वीजा प्रदान करने के पक्ष में नहीं है तो ऐसा ही होगा। 1992 में कैनबरा स्थित ईरान के दूतावास पर हमला किया गया था। राजनीतिक प्रदर्शनकारियों ने कमरे में आग लगा दी, दूतावास के गेट के बाहर खड़ी एक कार के शीशे तोड़ दिए और दूतावास के एक कर्मचारी पर स्क्रूड्राइवर से हमला भी किया। इस हमले का हर्जाना ऑस्ट्रेलिया वासियों ने लगभग आधा मिलियन डॉलर की राशि मुआवजे के रूप में चुकाया। नेशनल आर्काइव ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी इन कैबिनेट कागजातों से पता चलता है कि हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मुआवजा विश्व स्तरीय नीति के तहत ही दिया, परंतु राशि देते समय इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि यहां की सरकार ने दूतावास और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा में कमी कर दी थी। इस हमले के तुरंत बाद दूतावास के एक कर्मचारी अली बोर्गो ने इमारत के सामने खड़े होकर जोर से चिल्लाया और कहा कि फेडरल पुलिस ने दूतावास की चेतावनियों को नजरअंदाज किया।
The Federal Police of Australia is responsible for whatever happened here because they were noticed at least 7 hours before that we are going to be attacked possibly.
नेशनल आर्काइव्स ने इन कागजातों को 1 जनवरी को जारी करने का फैसला इस घटना की याद में ही किया है। इन कागजातों से यह भी पता चलता है कि ईरान के राजदूत ने अपने दूतावास और वहां कार्यरत कर्मचारियों को हुए जोखिम के लिए ऑस्ट्रेलिया से 1.7 मिलियन डॉलर की राशि हर्जाने के रूप में मांगी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने महसूस किया कि इस घटना के सिलसिले में दूतावास ने सरकार के साथ बहुत थोड़ा ही सहयोग किया है और इस घटना के 6 महीने बाद मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया कि यदि ईरान के राजदूतों को ऑस्ट्रेलिया की आंतरिक सुरक्षा में बाधा डालने का आरोपी पाया जाएगा तो उन्हें यहां का वीजा नहीं मिलेगा। जिस आदमी ने ईरान के दूतावास पर हुए हमले को अपने कैमरे में कैद किया वह SBS में कार्यरत मिक ओब्रायन थे और उन्हें आज भी सब कुछ याद है।
It was pretty nerve-wracking and the hearts were racing, I can tell you.
1990 के प्रारंभ में बॉब हॉक और पॉल कीटिंग के बीच राजनीतिक युद्ध भी चल रहा था जो पॉल कीटिंग के प्रधानमंत्री बनने पे समाप्त हुआ। पॉल कीटिंग ने ऑस्ट्रेलिया वासियों पर अपनी छाप काफी पहले ही अपने भाषा प्रयोग से छोड़ दी थी। इस रंगीन भाषा और विनोदपूर्णता के बावजूद कीटिंग सरकार आर्थिक मंदी के प्रभावों से जूझ रही थी और कीटिंग के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बेहद जरूरी था। बजट में घाटा 15 बिलियन डॉलर के ऊपर जा चुका था और बेरोजगारी दर 11% पहुंच गई थी। यह विश्वव्यापी मंदी के बाद से सबसे अधिक दर थी। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के इतिहासकार निकोलस ब्राउन बताते हैं कि आर्थिक मुद्दों ने उस समय के कई बड़े निर्णयों पर असर डाला।
Cabinet is told repeatedly it's not kind of working, but also the fact that it's not working is making it so much harder for us to fund the promises that we've made. So that's where the issue of the deferred tax cuts, the ramping up of taxation on cigarettes, tobacco, unleaded fuel and so on, all of this becomes part of that awkward message that the Keating government is having to preach. Saying we're not going to go down the Liberals' route of putting a GST on absolutely everything, but equally we're kind of having to impose taxes on basic kind of consumables.
ठीक इसी समय विश्व के दूसरे सिरे पर स्थित युगोस्लाविया विभाजन से गुजर रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने बाल्कन शरणार्थियों के लिए अपने द्वार खोले और यह समुदाय यहाँ चौथे सबसे बड़े सांस्कृतिक गुट के रूप में उभर कर सामने आया। कैबिनेट को चेतावनी दी गई यदि यह संख्या और बढ़ती है तो इसमें से कई लोग युद्ध के प्रभावों और उससे जुड़े मसलों को ऑस्ट्रेलिया में भी ला सकते हैं। परंतु एक पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार इंडिजिनस मामलों की वजह से पॉल कीटिंग का स्थान इतिहास में दर्ज हो गया, खासतौर पे उच्च न्यायालय के माबो मामले पर उनकी प्रतिक्रिया से। 15 नवंबर 1993 को देश के नाम जारी अपने संदेश में कीटिंग ने कहा,
The court's decision was unquestionably just. It rejected a lie and acknowledged the truth. The lie was terra nullius, the convenient fiction that Australia had been a land of no one. The truth was native title.
उस समय के इंडिजिनस अफेयर्स मंत्री रॉबर्ट टिकनर के अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व करने में एक पल के लिए भी अस्थिरता नहीं आई।
And there was really only one shot at this. You know, history would have absolutely condemned us if we had have come up with a tawdry, half-baked and unworkable outcome. And as Paul Keating has said himself, the cabinet did in 18 months what sometimes would take a decade in other countries to achieve.
मई 2017 में 1967 के उस जनमत संग्रह को पूरे 50 वर्ष हो जाएंगे जिसके बाद इंडिजिनस ऑस्ट्रेलिया वासियों को राष्ट्रीय जनगणना में स्थान प्राप्त हुआ। रॉबर्ट टिकनर मौजूदा प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल से निवेदन कर रहे हैं कि वे इस वर्ष मनाए जाने वाली जयंती में और अधिक बदलाव लाएं। उनके अनुसार यह काम कोई प्रधानमंत्री ही कर सकता है।
If you want to really drive change, let me tell you, no Aboriginal Affairs Minister, whether it's Mother Teresa, Nelson Mandela or me, no one can change the rules. It's got to be driven as a national leadership issue, as a national priority.